ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद सात अध्याय दो श्लोक नंबर 48। पहले आप लोग को जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए, एक साल हो गया, किसी का जाने का इच्छा था, फिर भी इच्छा हो रही जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। भगवान स्वयं अपना महाप्रसाद भेज दिया, तब पहला महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, कोई एक भक्त आके बांट दे, क्योंकि महाप्रसाद इतना टाइम तक वेट नहीं करता है। प्रसाद मात्रेण भोक्तव्यम, महाप्रसाद पाने मात्र से इमिडिएटली मुख में ले लेना चाहिए, इसलिए पहले बांट देना चाहिए। ठीक है, और मेरा पीछे दोहरा ही है जो शब्द बीत था अभिनिवेश आयम जात गुणेशु अर्था दृक्वच जथा मनोरथ स्वप्नम सर्वम इंद्रियकम मृषा विथत अभिनिवेशो अयम जद्गुणेषु अर्थ दृक्वचः जथा मनोरथ स्वप्नः सर्वम् इन्द्रियकम् मृषा। शब्दानुवाद वितथ व्यर्थ अभिनिवेश धारणा अयम् यः जत् जो गुणेशु भौतिक प्रकृति के गुणों में अर्थ तथ्य के रूप में दृक् बचह देखना तथा बोलना जथा जिस तरह मनोरथ मानसिक कल्पना दिवा स्वप्न 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 सर्वम सब कुछ इंद्रियकम इंद्रियों से उत्पन्न मृषा झूठ। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण में भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की भौतिक प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख जो वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बात करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरता रहता है और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब वह रात में सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखता है, तो ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य, भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप से प्राप्त होने वाले सुख और दुख वास्तविक नहीं है, नहीं होते हैं। अतः भगवद गीता ऐसे सुख की बात करती है जो भौतिक जीवन बोध से परे है। सुखम अत्यंतिकम यदत बुद्धि ग्राह्यम ते इंद्रिय, जब हमारी इंद्रिया भौतिक कल्पना से शुद्ध हो जाती है तो ये अतिंद्रिय अर्थात दिव्य इंद्रिया बन जाती है। और जब ये दिव्य इंद्रियों के स्वामी हृषिकेश की सेवा में लग जाती है तो मनुष्य को असली दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है। अपने सूक्ष्म मन के मनोरथ द्वारा हम जो भी सुख या दुख निर्माण करते हैं उसमें वास्तविकता नहीं होती, वो मात्र मनोरथ मानसिक कल्पना होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मनोरथ द्वारा तथाकथित सुख की कल्पना न करें। प्रत्युत सबसे अच्छा मार्ग तो यह है कि मन को हृषिकेश की सेवा में लगाया जाए और वास्तविक आनंदमय जीवन का अनुभव किया जाए। वैद्य की उक्ति है, अपामसोम मृता अभिम अप्सरो भी विहराम। ऐसी विचारधारा से मनुष्य स्वर्गलोक जाकर युवतियों के साथ रमण करना तथा सोमरस का पान करना चाहता है, किंतु ऐसे काल्पनिक आनंद का कोई महत्व तो नहीं है। जैसे कि भगवद गीता 7.23 में पुष्टि की गई है, अंत बंतो फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम। अल्पबुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे लोग को सीमित तथा क्षणिक फल प्राप्त होता है। यदि कोई सकाम कर्म द्वारा या देवताओं की पूजा से इंद्रिय भोग के लिए स्वर्गलोक चला भी जाए तो भगवद्गीता द्वारा ऐसे पद को अंतवंत अर्थात नश्वर बताकर निंदा की गई है। जो इस तरह से सुख भोगता है वह स्वप्न में सुंदरी का आलिंगन करने जैसा होता है। भले ही कुछ काल के लिए यह सुख कर लगे किंतु मूलतः यह मिथ्या है। इस जगत में सुख तथा दुख की मानसिक कल्पनाओं की तुलना स्वप्न से की जाती है, क्योंकि वे झूठ होते हैं। भौतिक इंद्रियों का उपयोग करके सुख प्राप्त करने के सारे विचार मिथ्या आधार भूमि पर टिके होते हैं, अतः व्यर्थ होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरुसुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनसगणा ललिता श्रीविशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को श्री श्री कृष्ण वाराणसी का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप लोग थोड़ा कृपा आशीर्वाद करेंगे तो कुछ भागवत का ऊपर कुछ शब्द का ऊपर कुछ बोल सकता हूँ, प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए। ऐसा तो क्योंकि भागवत बोलने का हमारा अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब सेवा दिया जाता है इसको करना पड़ता है, एक ही प्रकार की सेवा माना जाता है। क्योंकि ये नित्यम भागवत सेवाया जो प्रत्येक दिन हमारा ये कक्ष चलता है। तब आप ये जो श्लोक सुन रहे हैं, मैं इसका पीछे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे भक्त लोग जब बैठते हैं फिर पीछे चला जाता है, बहुत हर दिन यही सुनते आ रहा है, भाई हिरण्यकश्यप पत्नी रो रहा है ना, हिरण्यकश्यप को समझाया उनका भतीजा लोग को, और क्या हुआ इसका बाद है, जमदूत छोटे बच्चा बनकर आ गया है कि नहीं, ये तो हर दिन चल रहा है। ये चीज को हमें सुनते सुनते फिर हमारा कान पक जाता है, अरे क्या बोलते हैं, वही तो काल भी बोल रहा था, वही ऐसा ही होता है ना। तो फिर मैं आज थोड़ा टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ, टॉपिक चेंज तो नहीं है, जो विषय वस्तु है उसका ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इसमें दो पॉइंट आ रहा है, आप अनुवाद और भावार्थ पढ़ के देखिए, इसमें दो चीज है, सुख और दुख के बारे में वर्णन किया जा रहा है, व्यक्ति कब सुखी होगा और कब दुखी होता है, दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है, और जो अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हो क्या करने थे अनंत सुख मिलेगा, और दुख कहाँ से प्रकट होती है। देखिए हमें सुख और दुख को क्या मानते हैं, सुख और दुख, दुख का डेफिनेशन क्या है और सुख का डेफिनेशन क्या है, हमें दुख इसको मानते हैं अपना इंद्रिय तृप्ति को, तृप्ति में बाधा आने के बाद हमें दुखी होते हैं, सही, एस और नो बोलिए। और इंद्रिय तृप्ति में बाधा नहीं है तब हम सुख मानते हैं, ये चीज होता है। लेकिन यहां पे ये जो इंद्रिय है ये भौतिक जगत में, भौतिक इंद्रिय मतलब जड़ इंद्रिय, जड़ इंद्रिय मतलब प्राकृत इंद्रिय से अप्राकृत वस्तु को देखना और अप्राकृत का सेवा में लगना इतना आसान नहीं, हमें जड़ इंद्रिय में देखते हैं। इसी जिस प्रकार हमें वृंदावन में रह रहे क्या हमें अपना को खुद अनुभव आ रहा है, हमें वृंदावन में रह रहे अनुभव आ रहा है नहीं आ रहा है, जड़ इंद्रिय में, जड़ बुद्धि में, जड़ ज्ञान में, जड़ शरीर में हमें हर चीज जड़ दिखाई दे रहा है। और ये कब होगा, जब इंद्रिय दिव्य होगा, और इंद्रिय दिव्य कब होगा, जब हृषिकेश का सेवा में लगेगा, प्रभुपद यहाँ पे मेंशन कर दिए, जब हृषिकेश का सेवा में लगेगा, इसलिए तो भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक आता है ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, हृषिकेण और हृषिकेश ये दोनों शब्द में अंतर क्या है, हृषिकेण मतलब इंद्रिय और हृषिकेश मतलब भगवान, जो इंद्रियों का स्वामी है उनका सेवा करना है, उनका सेवा करना है सारा इंद्रियों को, और जब वो सारा इंद्रिय भगवान का सेवा में लगता है तब जाके इंद्रिय तब दिव्य बनते, नहीं तो सारा इंद्रिय जड़ है। दिव्य बनाने के लिए जिस प्रकार एग्जाम्पल देने से समझ सकते हैं, शास्त्र में प्रमाण भी है, ये शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है, ये शरीर को पवित्र करना चाहते हो, शरीर प्रत्येक दिन आप स्नान कर रहे, प्रत्येक दिन मंत्र पाठ कर रहे, फिर भी शरीर को पवित्र करना है, तब शरीर को पवित्र करने के लिए शरीर को प्रत्येक अंग को भगवान का सेवा में लगाना, जिसी प्रकार महाराज अम्बरीश प्रत्येक इंद्रिय को भगवान का सेवा में जड़ित किए सारा, तब जाके क्या होगा, सारा इंद्रिय दिव्य होगा, हर इंद्रिय को भगवान का सेवा में लगाने का। लेकिन हमारा जितने सब इंद्रिय है, एकादश इंद्रिय है, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय, और इसका साथ साथ मन है, लेकिन मन बैक में रहता है, पीछे रहता है, और इंद्रिय सारा आगे रहते हैं, और ये बैक क्या करता है, पुश करता है, देखा होगा पुश करता है, मन हमेशा पुश करता है, हाँ कभी आंख कोई भी खराब चीज देख लिया, कोई भी चीज खराब चीज देख लिया, और फिर क्योंकि हमें जन्म जन्मांतर विषय भोग करके आए ना, तो मन वहीं पे लगा रहता है, तो वो बाई चांस वो देख लिया, आंख देखा वो चीज को, अब मन पीछे रह के फिर क्या करता है, वो पुश करता है इसको, वो इंद्रिय को पुश करता है, और आंख का साथ मन जड़ित रहता है, आंख का कान का साथ मन रहता है, और हाथ का साथ मन रहता है, पैर का साथ मन रहता है, मन सभी का पीछे से क्या करता है, पुश करता है, पैर को बोलता है चलो, हाथ को बोलता है टच करो, और कान को बोलता है सुनो। कितने जन्मों से ये चलते आ रहा है, इसलिए यहां पे कहते हैं, और इतने बड़े दुष्ट है हमारा मन, कभी भी भगवान का भक्ति का तरफ लगाने में नहीं देता है, इतने बड़े दुष्ट है। प्रभुपाद भगवद गीता में जो छठा चैप्टर में ध्यान योग आता है, ध्यान योग में एक श्लोक का भावार्थ में लिखते हैं, जो मन का वजह से हम लोग को ये जन्म मृत्यु चक्र का अंदर घूमते हैं, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मुखाय बंधाय विशेषंग मुक्ते निर्विषय मन, मन का वजह से हमारा क्या होता है, बंधन होता है, और ये मन का वजह से फिर हमारा मुक्त भी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, जिस प्रकार हमारा शरीर का अंदर मन एक ही है, उसी प्रकार एक ही चाबी है, जिस चाबी से खुलता है उसी चाबी से, सही, जिस प्रकार आप लोग के पास मोबाइल होगा, जिसमें जो स्विच से मोबाइल बंद हो जाता है उसी स्विच से खुलता है, उसी प्रकार हमारा मन, मन को विषय भोग में लगाओगे तो बंधन में फंसोगे, विषय भोग में लगाओगे तो वह नरक जाओगे, और यही मन को प्रभु का भक्ति में लगाओगे तो कृष्ण लोक जाओगे। इसलिए अम्बरीश महाराज एक ही जो श्लोक आता है कहते हैं श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद अध्याय 4 श्लोक नंबर 18 19 और 20 में, तीन श्लोक में संपूर्ण इंद्रिय के बारे में बताते हैं, सारा इंद्रिय को किसी प्रकार भगवान का सेवा में लगाते हैं। सबई मन कृष्ण सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो वंचासी वैकुंठ गुणानु वर्णने करौ हरि मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिंच कराचित शतकोत्थ दये। इसमें चार आता है, पहला आता है सबई मन कृष्ण, मन को भगवान का चरणारविंद में लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि भगवान का चरण में जो निशान है, भगवान का बाएं चरण और भगवान का दाएं चरण में टोटल मिला के 19 निशान है, वो 19 निशान में आपका मन को केंद्रित करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाता है भगवान का चरण पे मन लगाओ, ध्यान करो, भगवान का चरण को ध्यान करो। भाई भगवान का चरण में है क्या? हम ध्यान लगाना कहा जाता है, चरण दर्शन करने के लिए कहा जाता है, ये जो भगवान का चरण पे निशान है वो निशान क्या करता है, आपका विषय भोग को छेदन कर देता है। भगवान का जिस प्रकार भगवान का हाथ में आयुध पकड़े है और भगवान का चरण पे, इसी प्रकार ये चार आयुध भी भगवान का चरण पे निशान है। शंख चक्र गदा पद्म तो है, छत्री भी है, जौ भी है, और ऐसा चतुर्भुज का टाइप पे बना हुआ है, ये सब अलग अलग का काम के लिए। किसको ध्यान करने से आपका कौन सा विषय भोग खंडित होगा? हमारा ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग सिर्फ यही शंख चक्र, मतलब सिर्फ चक्र को आप ध्यान करोगे तब क्या होगा, हमारा संपूर्ण सभी विषय चीज को खंडित कर देंगे। इसलिए कहते हैं मन को भगवान का चरण पे, अम्बरीश महाराज कहते हैं सबई मन कृष्ण पदार बिंदे, भगवान का चरण पे मन लगाओ। लेकिन हमारा मन लगता है बताइए? सत्य युग में मन लगता था, युग में परिवर्तन हो गया ना, सत्य युग में मन कभी भी हिलता नहीं था, कभी भी हिलता नहीं था। आज का टाइम पे मन टिकता नहीं है कि नहीं? एक ही माला करने का टाइम पे मन कितना दूर तक जाता है आप खुद बताइए, सभी को एक्सपीरियंस होगा, दो दो सेकंड में। लेकिन हमको मन को खींचना पड़ता है, मन को आपका तरफ लेना पड़ता है, अपना तरफ। इसलिए तो ये जो भगवद गीता का ऊपर का पिक्चर में दिया जाता है ना, मन जो है क्या है, लगाम है, और घोड़ा क्या है, इंद्रिय है, और ये जो लगाम किसका हाथ में दिया गया, भगवान बैठे हैं सारथी, उन्हीं का हाथ में है ना, उन्हीं का हाथ में दिया गया लगाम। तो इसी प्रकार हमारा मन को केंद्रित करना पड़ता है, वो टिकता नहीं, उसको लाना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता है, लेकिन भगवान कहते हैं मनमानी नहीं चलेगा, मन मना। क्या कहते हैं? गीता पढ़िए ना, 18 अध्याय 65 नंबर श्लोक में भगवान स्वयं प्रमाण दे रहे, मन मना भव, मन को मना ले, मन मानता नहीं, मन को मनाना पड़ता है। जिस प्रकार बच्चा कभी भी स्कूल जाना नहीं चाहता है, चाहता है? आप लोग सभी बच्चे थे कि नहीं थे? उसी टाइम तो हमें कितने बदमाश किए हैं, कभी भी नहीं जाते थे। तो माता पिता समझाते थे, समझा के स्कूल भेजते थे। इसी प्रकार हमारा मन मानता नहीं, हमारा मन को मनाना पड़ता है। इसलिए यहां पे कहते हैं सबई मन कृष्ण प्रमात्मा, सबई मन कृष्ण पदार बिंद पंचाशी वैकुंठ गुणानुवर्णने। और जो बाच वेग है, वाणी वेग है, वाणी जो है, जो बोल रहे हो, ये क्या करना है, क्या इसको आप भगवान का गुणानुवाद, भगवान का लीला कहना है। और कुछ नहीं करना है तो क्या करना चाहिए, हरे नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं करना है तो वाणी को भगवान का नाम कीर्तन में लगा दो। और भगवान का वाणी में, भगवान का नाम कीर्तन में नहीं लगाओगे कि भगवान का गुणानुवाद में नहीं लगाओगे तो वो ये वाणी क्या करेगा, विषय का चर्चा करेगा। क्या करेगा, विषय चर्चा। देखो आप दो चार लोग बैठ जाएंगे अभी, पूरा पारिवारिक का बात होगा। दो चार लोग बैठ जाते हैं, आप देखिए हम लोग भक्त बने हैं लेकिन संसार का लोग को देखिए, दो चार लोग बैठ जाएंगे तो पूरा देश विदेश क्या सभी देश का पूरा बात निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं एक एग्जाम्पल में, ये भक्ति रसाम उपदेशामृत में इसका उदाहरण देते हैं। और सांप और क्या है, मेढक का, सांप और मेढक, मेढक क्या करता है बारिश का दिन में टर टर करता है, इसका जुहा को सेवा में तो लगाया, क्या सेवा में लगाया, सांप का सेवा में, सांप को बुलाया ना, बुलाया भाई सांप को, किसके लिए बुलाया, सांप को किसके लिए बुलाया, प्रेम करने के लिए, आई लव यू करने के लिए बुलाया, नहीं, सांप को बुलाया खाने के लिए, और किसके लिए नहीं। और संसार में सांसारिक बात जो करते हैं और वो भी बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, यमदूत को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, यमदूत को बुलाते हैं। लेकिन भक्त, भक्त इसी जुहा को उपयोग कर रहा है, लेकिन भक्त किसको बुला रहा है, भगवान को बुला रहा है। देखिए अंतर कितना है इसमें। तब इसलिए कहते हैं पंचाशी वैकुंठ गुणानुवर्णन, वैकुंठ अधिपति जो कि नारायण, उनका गुणानुवाद कर रहे। करो हरि मंदिर मार्जना दिशु, करो मतलब क्या है, हाथ, हाथ को भगवान का सेवा में, भगवान का सेवा मतलब मंदिर मार्जना, झाड़ू पोछा लगाना। अभी तो हम लोग पहले समय पे हम लोग खुद करते थे, लेकिन आज का टाइम तो हमें सब स्टाफ रख दिया, सभी स्टाफ है, हमें क्या करना है, सब स्टाफ करेंगे। इसलिए तो हमारा चेत दर्पण मार्जन में हमें बोलते हैं, सिर्फ मुख से बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, सभी थियोरिटिकल चलता है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। यहाँ के साधु संत लोग ब्रज में रहने वाले सुबह से शाम तक झाड़ू लगाते थे, श्यामानंद पंडित के बारे में पढ़ेंगे, ये झाड़ू लगा के भगवान को प्राप्त किए। इसलिए तो नाम पड़ा सेवा कुंज, क्या नाम पड़ा, सेवा कुंज, सेवा करते करते कुंज का अंदर स्वयं राधारणी का दर्शन, स्वयं राधारणी का दर्शन। मैं इसका बारे चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत तो जानकारी देने के लिए। और हम लोग मंदिर मार्जना करने के लिए स्टाफ रखो, सैलरी दे के, कितना दुर्दैव अवस्था अभी। तब और फिर हाथ से और क्या सेवा कर सकते हैं, भगवान का माला भी बना सकते हैं, भगवान के लिए ड्रेस बना सकते हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, ये सभी में हाथ नहीं झुकते। और ये सारा सेवा नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा सेवा क्या करना है, हाथ को भगवान का सेवा में लगाना चाहते हो, प्रत्येक दिन भगवान का दरबार का सामने, तब कीर्तन का साथ साथ क्या करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, ताली का साथ कीर्तन करो, देखो इसका आनंद कितना है। ताली बजाने मात्र से आपका पाप रेखा ऑटोमेटिकली उड़ के भागता है, रहता नहीं, पाप रेखा। इसलिए हाथ को भगवान का सेवा में इसी प्रकार मंदिर मार्जन, यहां पे लिखा गया मंदिर मार्जन सिर्फ करो, हरि मंदिर मार्जन श्रुतिंच कराचितो शतकथ दे, और सुनना है हाँ कान को भगवान कृष्ण कथा में लगाना चाहिए। विषय भोग जहां पे कथा चल रहा है, विषय वार्ता जहां चल रहा है, यहां से कान को हटाना चाहिए। लेकिन हमारा कान वहां से हटता नहीं, वहां और अच्छा से क्या हुआ क्या हुआ, आप लोग सुने होंगे नहीं हुए, जब मंथरा बोलती थी ना, मंथरा मन मन को थरा दिया, इसलिए नाम पड़ा मंथरा, मन को थराया। हाँ तब कक्के का जो मन था ना, कक्के का मन को ढोल डल कर दिया, तो वो परेशानी होके फिर जाके ये जो वरदान मांगा। वो विषय का चीज को, क्योंकि कान ये विषय का चीज सुनना ज्यादा चाहता है, भक्ति के बारे में सुनना कान पसंद नहीं करता है। लेकिन भक्त लोग को तो यही होता है, हमें 24 घंटा कैसा भगवान कथा सुने। यहाँ पे तीन श्लोक के बारे में मैं पूरा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो एक श्लोक का ऊपर ये बताया जो कि 9:4-18 नंबर श्लोक का, इसमें क्या अम्बरीश महाराज के सारा इंद्रिय जितने सब, आप आँख भगवान को दर्शन करने में, स्पर्श इंद्रिय हाँ भगवान का भक्तों का सेवा करने के लिए, घ्राण इंद्रिय हाँ भगवान का चरण पे जो तुलसी और फूल है उसको आघ्रण करने के लिए, रसन इंद्रिय हाँ, और भगवान का जीवा से दो काम होता है, एक ही भजन और एक ही भोजन, दो काम भजन और भोजन। इसलिए जीवा को हमें ज्यादा से भजन में नहीं लगा के ज्यादा भोजन में लगाते, देखते देखते है घड़ी को टाइम कितना बजे 9 बजेगा, इसलिए रसन इंद्रिय को बहुत महाप्रसाद पाने में लगाते हैं, वो भी सही है। शास्त्र प्रमाण देता है शरीर सारा इंद्रिय दिव्य हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब कब तन पवित्र सेवा किए, जब इस शरीर को भगवान का सेवा में लगाएंगे, और किसका सेवा में नहीं, और किसी का भी सेवा में लगाओगे आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए तो नाम पड़ा है भक्ति रसा अमृत सिंधु, क्या नाम पड़ा है प्रभुपाद ने लिखे भक्ति रसा अमृत सिंधु, भक्ति मतलब सेवा, रस मतलब वो सेवा करके, और किसका सेवा करके कृष्ण का सेवा करके जो रस प्राप्त करोगे, और ये अमृत, वो अमृत कभी तीखा नहीं खट्टा नहीं, अमृत है। और सिंधु, सिंधु मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता है, कमी नहीं पड़ेगा, सिंधु मतलब सागर है। और वो आनंद को प्राप्त करना है, तब वो आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको स्थिति बदलाना पड़ेगा, आपका स्थिति को बदलना पड़ेगा। अभी हम लोग को पहले कहां थे, अभी कहां है और कहां रहना है, जहां रहने से कभी भी वो सुख कमी नहीं पड़ेगा। वो जगत का नाम है वैकुंठ, और वैकुंठ जाने के लिए पहले उपाय करना पड़ेगा। लेकिन ये भौतिक जगत में जो सुख दुख मिल रहे ना, ये सब क्या है, काल से मिलता है, कर्म से मिलता है और स्वभाव से मिलता है। तीन चीज आप लोग जो लिखना चाहते लिख सकते हैं। हाँ ये जो सुख और दुख मिलता है काल से मिलता है, कर्म से मिलता है और स्वभाव से मिलता है। लेकिन आप वैकुंठ लोक जाओगे और ये जगत में जो सुख है ना, ये उसका परछाई है, यहां पे सुख है नहीं। यहां का सुख को हमें सोचते हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन है नहीं, हमें वो नित्य सुख को हमें आस्वादन अभी तक नहीं किया। एक एग्जाम्पल देने से आप समझ सकते हैं। अब बताइए, कभी भी आप लोग रसगुल्ला देखा नहीं, दूसरा व्यक्ति खाया, वो आके बोलता है आपका सामने, बोलता बहुत रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, आज बनाया था गौरव भगवान ने, बहुत अच्छा टेस्ट लगा। और बोला और दूसरा व्यक्ति सुन लिया, और जो खाया उसको जितना आनंद मिला होगा, जो नहीं खाया सुना है उसको आनंद मिलेगा, तो वही है। हम प्रत्येक दिन ही सुन रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे, जब प्रैक्टिकल मतलब हमारा सारा इंद्रिय को जब भगवान का सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक उसका आस्वादन नहीं कर सकते। और ये जगत पे है नहीं, हमें कृष्ण लोक को जाने के लिए उपाय हमको करना पड़ेगा। और ये जगत में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, ये जड़ शरीर जड़ इंद्रिय मिला है ना, इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं भौतिकवादी मनुष्यों का दुख का कारण है, भौतिकवादी मनुष्य का दुख का कारण है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत की फर्स्ट कैंटो 7 अध्याय श्लोक नंबर 5 में कहते हैं जया समोहित जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परो अपि मुन्यते अनर्थ तत्कृतम चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंग शक्ति से कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इसी प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता रहता है। ये जगत में कष्ट ही कष्ट, दुख मिलेगा ही मिलेगा आप नहीं चाहते हुए। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में 8 अध्याय 15 नंबर श्लोक में गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं ये जगत का नाम क्या नाम दिया बोलो, दुखालय। और दुखालय में दुख मिलेगा ना और कुछ मिलेगा? जिसी प्रकार भोजनालय में जाते हो तो भोजन मिलता है ना, वस्त्रालय में वस्त्र ही मिलता है ना, औषधालय में औषध ही मिलता है ना, है कि नहीं? तो उसी प्रकार ये जगत का नाम प्रभु ने स्वयं दिया दुखालय। मिलेगा क्या? दुख है, हमें सुख ढूंढने से भी नहीं। संसार में जो सुख मिलता है क्षणिक सुख है। प्रभुपाद एक ही जगह पे मेंशन करते हैं संसार में जो सुख मिलता है उसका जुगुन जुगुन देखे बारिश का मैच में एक छोटे से कीड़ा होता है, उसी प्रकार सुख ये जगत में सांसारिक जो सुख है इसी प्रकार जुगुन सदृश सुख है। और वो सुख का पीछे सारा जगत धावमान है, उस सुख का पीछे। कहते हैं संसार से बंधन जोड़ते तो दुख का अंत नहीं, संसार का साथ है आप संबंध जोड़ोगे तब दुख का अंत नहीं होता है, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ते हो तो सुख का अंत नहीं। तब आप किसका साथ संबंध जोड़ना चाहिए? हाँ, लेकिन होता है क्या? अभी हम बताएंगे, यहीं पे बैठे 24 घंटा अभी नाम कीर्तन चलेगा, देखते हैं। अभी 2 सेकेंड है, 9:02 पे इमीडिएटली कॉल आ जाएगा, प्रभु जी आ जाइए ना, घर पे परेशानी है, परेशानी हो नहीं हो इमीडिएटली हमको जाना पड़ेगा, या क्लास छोड़ो क्या करना है। होता है क्या? पहले हमारा संसार का साथ संबंध है, संसार का साथ संबंध प्लस उसका साथ फिर शरीर का साथ जो नश्वर है, ना संसार रहेगा ना शरीर रहेगा, ये दोनों क्या है? नश्वर है, अनित्य है, नित्य नहीं है। लेकिन हम शरीर का प्रति आसक्त प्लस संसार का प्रति आसक्त, ना शरीर का प्रति विरक्त आ रहा है ना शरीर का प्रति विरक्त आ रहा है ना संसार का प्रति विरक्त आ रहा है। कितने लोग का विरक्त आ रहा है, हाथ उठाए, मेरा तो होता नहीं, आता है विरक्त। सुख पाना चाहते हो दूसरों को सुख दो, जैसा बीज बोगे ऐसे ही खेती होगी। आप सुख चाहते हो दूसरा को सुख दो, लेकिन आज का टाइम पे हम लोग दूसरा को किसी को सुख देना नहीं चाहते, पहले उनको दुख देना चाहते हैं, पहले दुख देना चाहते हैं, सुख देना नहीं चाहते हैं। तब समय हो जाता है, मेरा और एक चीज बताने के लिए था, जो चीज क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है ऐसा आनंद को प्राप्त करें, जो जगत में जाने मात्र से वो आनंद कभी खत्म नहीं होता है। कहते हैं अवधो विधो बधु मुखे फणि निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। इसका अर्थ क्या है? अवध हो, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग जाने से सुख मिल जाता है, स्वर्ग जाने से व्यक्ति को अमृत मिल जाता है, स्वर्ग जाने मात्र से क्या होता है व्यक्ति अमर हो जाता है, उसका स्वर्गलोक में भी ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जितने सब जीव है सभी का ये जन्म मृत्यु चक्र चलता है। सिर्फ एक ही जगत है जो कि वैकुंठ जगत, वो जगत में ये जन्म मृत्यु चक्र नहीं होता है। और वैकुंठ का ऊपर है फिर गोलक वृंदावन, जहां पे कृष्ण नित्य निवास करते हैं। जिस प्रकार वृंदावन में कृष्ण नित्य निवास करते हैं, ये भौम वृंदावन है और गोलक वृंदावन जो है वहां पे भगवान नित्य निवास करते हैं, और वहां पे भी जन्म मृत्यु चक्र नहीं होता है। लेकिन ये ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक हर जीव का ये जन्म मृत्यु चक्र चलता है। लेकिन यहां पे कह रहे हैं, अवधु विधु बधु मुखे फणि निवास है स्वर्ग सुधा वसती वही विबुधा पतंती। अवधु मतलब क्या है? समुद्र। अवधु क्या मतलब? समुद्र। और समुद्र का जल कैसा है? खारा। समुद्र का जल खारा है, और इसको कोई एक बूंद पान कर सकते है? एक बूंद भी पान नहीं कर सकते है, पी नहीं सकते है। और दूसरा विधु, विधु मतलब क्या है? चंद्रमा। विधु मतलब चंद्रमा। और चंद्रमा क्या स्थिति होता है? खे होता है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। फिर बधुमुख है, फिर बधुमुख, बधु मतलब स्त्री। स्त्री का मुख में क्या अमृत है? देखिए ना, समुद्र में अमृत है, समुद्र में अमृत होता था तब खारा है ना, और चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा में अमृत होता है फिर घटता है, घटता बढ़ रहा है। और अमृत पाने पान करने मात्र से, अमृत पान करने मात्र से व्यक्ति का अमर हो जाता है। लेकिन ये नहीं कह रहे बधुमुख के मतलब स्त्री। स्त्री, स्त्री का मुख में अमृत है नहीं ना? स्त्री का मुख में अमृत नहीं है, कभी कभी ऐसा निकल जाता है, मतलब जहर भी निकल जाता है कभी कभी। इसलिए तो कभी कभी पति लोग को डिवोर्स करना पड़ता है, बुरा नहीं मानना। कभी कभी यहां पे भक्त लोग प्रवचन देते हैं, कभी कभी सुनने मिला, तब स्त्री पहले आती है, पहले सूर्यमुखी होके, कौन सा मुखी आके? सूर्यमुखी नहीं, पहले चंद्रमुखी आके। पहले जब आएगी ना, इतने चंद्रमुखी देखा होगा, बहुत सारे ब्रह्मचारी अभी बड़ा रोते रहते हैं संसार का साथ संबंध बांधने का बाद, शादी करने का बाद। देखिए कितने खतरनाक ये शास्त्र में वर्णन कर रहा है। कहते हैं बधुमुखे मतलब स्त्री। तब यहां पे जब पत्नी आती है तब पहले चंद्रमुखी बनकर आएंगी, इतने नम्रता का साथ सेवा करेंगे ना, हालत ठीक रहे। एक महीना दो महीने तो अच्छा से चलेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचारी कोई शादी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना हो जाता है, 6 महीना तो अच्छा तरह से सेवा करेगा। इसका बाद है, 6 महीने का बाद है सूर्यमुखी बन जाएगा, सूर्यमुखी। और इसका 6 महीने का बाद है तो कौन सा मुखी होगा? सभी को मालूम है, एक्सपीरियंस सभी का है, जैसा लग रहा है, सभी तो गृहस्थ भक्त बैठे हैं, जैसा लगता है। उसके बाद है ज्वालामुखी, इतना परेशानी हो जाता है। और उसका मुख में अमृत होता था तो फिर पति मरता क्यों? पति फिर मरता है। और फणी नाम निवास है, और फणी मतलब सर्प, सर्पलोक में अमृत है, सर्पलोक में भी अमृत नहीं है, सर्पलोक का मुख में जहर निकलती है, अमृत कहाँ है? और स्वर्गे, स्वर्गलोक में अमृत है, स्वर्गलोक में भी अमृत नहीं है। स्वर्गलोक का देवता लोक भी फिर क्या करते हैं? ये मर्त्य लोक आते हैं, स्वर्गलोक में ये मर्त्य लोक आते हैं, मर्त्य लोक आते हैं, स्वर्ग में भी अमृत नहीं, इसलिए स्वर्गलोक का देवता लोक भी पतन होते हैं, नीचे आते हैं। तब अमृत कहाँ है? कहते हैं खारम खेयम पतिमृतम गरलम पततम कंठे सुधा बसती वै भगवत जनानाम। और अमृत कहाँ है? कंठे सुधा बसती वै, जो भगवत जन है, जो भागवत है, जो महाभागवत है, उनका कंठ में अमृत है, उनका कंठ में अमृत है। इसलिए कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। और वो अमृत को जो व्यक्ति पान करता है, और पान करता है किसमें पान करता है? मुख से पान करता है? नहीं, कान से पान करता है। तो इसका वो व्यक्ति का जीवन धन्य होता है और वो व्यक्ति अमर हो जाता है। इसलिए तो परीक्षित महाराज बैठे कितने घंटा ये भागवत सुनने के लिए, कितना घंटा बैठे? 7 दिन में घंटा पूछ रहा हूं, आप लोग ऐसा आंसर देंगे? मैं घंटा पूछ रहा हूं, कितना घंटा बैठे? 168 घंटा परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के साथ सुखदेव भी बैठे, ऐसा नहीं सुखदेव उठ के चले गए और परीक्षित बैठा है। ये रस को इतने आस्वादन किए, भोग प्यास भी भूल चुके हैं परीक्षित महाराज। ना सुखदेव महाराज को भूख प्यास लग रहा है, ना परीक्षित को भूख प्यास लग रहा है, लेकिन हम तो भूख प्यासी वाले बैठे हैं, सही है कि नहीं? और ये रस को जो पान करता है वो व्यक्ति अमर होता है, वो व्यक्ति का। पर हमें हर व्यक्ति बोलता है परीक्षित महाराज का 7 दिन में मृत्यु होगा, मृत्यु होगा, मृत्यु होगा। भाई क्या मृत्यु हो, अमर है ऑलरेडी। उनका शास्त्र में प्रमाण दिया जाता है, परीक्षित महाराज के लिए हम लोग भागवत श्रवण कर पा रहा है। और परीक्षित महाराज नहीं होते हैं तब हमारे पास भागवत आता था? भागवत नहीं होता था। ये परीक्षित का बड़ा दया है, कृपा हो जो कि हमें भागवत हमारा पास आया और ये धरती पे भागवत आया। ये परीक्षित महाराज के लिए, परीक्षित महाराज का गुणगान करना चाहिए। जो परीक्षित महाराज को स्वयं भगवान गर्भ का अंदर में बचाया। किसी भक्त का मन में प्रश्न इसी प्रकार आता है, भाई गर्भ का अंदर में भगवान जब सुरक्षा दिया तब वहां पे भी सुरक्षा दे सकते थे, वहां पे भी सुरक्षा दे सकते थे, जो श्राप से बचा भी सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ये भगवान लीला था। जो ऐसा कर देते थे तो भागवत आपका सामने प्रकट नहीं होता था। ये कारण से जब भगवान गर्भ के अंदर में परीक्षित को सुरक्षा दे सकते हैं, क्या श्रमिक ऋषि का बेटा श्रृंगी का ये नहीं कर सकते थे? ये श्राप को काट नहीं सकते थे? काट भी सकते थे, लेकिन ये नहीं किया। इसीलिए क्योंकि आपका सामने भागवत प्रकट नहीं होगी, भागवत प्रकट कराने के लिए। और ये भागवत तो अमृत है, और ये अमृत को पान करना चाहिए। बहुत सारा अलग अलग श्लोक भी, अलग अलग शास्त्र में वर्णन भी है, जिस प्रकार ये सुख दुख से बचने के लिए। मैंने बहुत सारे नोट किया था इसको सारा चीज बताने के लिए, तो इतना टाइम नहीं, अभी ऑलरेडी 2 मिनट और भी बाकी रहा, क्योंकि हम अपना टाइम पे छोड़ते हैं भक्त लोग को, क्योंकि प्रसाद पहला, ये प्रसाद बाद में, अभी पहले प्रसाद होता है, सही। तो यहाँ पे आपको श्रवण करने में यही मिला है, हमारा जड़ इंद्रिय को किस प्रकार भगवान का सेवा में लगा के पवित्र कराना है। इसलिए कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध हो कल्याण। तन को, शरीर को भगवान का सेवा में लगा के पवित्र कराना है, धन को भगवान का सेवा है, धन को भगवान का सेवा मतलब दान देना है। और दान 3 प्रकार का होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी। सत्वगुणी दान कहा जाता है मंदिर में जब हमें दान करते हैं। और दान देके कभी भी अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए, कभी भी नाम बोलना नहीं चाहिए। जब आप नाम बोल देते हैं इमीडिएटली दान देने का जो महत्व, जो पुण्य है वो इमीडिएटली घट जाता है। और आज के टाइम पे तो पहला हमें अपना नाम दिखाते हैं। अरे नाम ये जड़ शरीर के लिए, जड़ शरीर के लिए नाम पड़ा है। हमारा नाम ऑलरेडी भगवान का खाता पे है, और रियल नाम हमारा कृष्ण नित्य दास है, हमें दासत्व को स्वीकार करना है। नाम लिखाना, नाम लिखाना, भाई रसीद काटो हमारे नाम से तब धन पवित्र होगा दान देने से, और मन पवित्र हरि भजन से। मन को पवित्र कराना चाहते हो तो वह हरि भजन में मन को लगाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।